نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في قرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وسلم، أما بعد. الله سبحانه وتعالى نے اس امت پر خاص کرم اور فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دو خوشیاں عطا فرمائی ہیں سال کے اندر، ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ. عید الفطر تو ہم گزار چکے اور الحمدللہ عید الاضحیٰ کی ابھی ہم گزر رہے ہیں اس سے. ان کو خوشی کہتے ہیں اللہ نے، یہ جو ہے خوشیاں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہالیڈیز ہیں ہماری، اللہ نے مقرر کر دی ہیں ہمارے لیے کہ بھائی اس میں خوشی کرو. بہت بڑی بات ہے، دو دن دے دی چھٹی کی، پوری چھٹی، فرسٹ کلاس کھاؤ، جو چاہنا کھاؤ، خوب پیو جو پینا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور جتنے اچھی چیزیں کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنے زیادہ ثواب دوں گا. اللہ کی رحمت بھی خوب ہے، کبھی کھلا کے کبھی کبھی نہ کھلا کے. یہ گانا خوب کھاؤ، خوب میٹھا کھاؤ، یہ فطر میں تو کھائے پیا خوب، ماشاء اللہ. اور ادھر دعا کے اندر یہ کہاں خوب گوشت کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، جتنی قربانی کرو خوب کرو، خوب خوشی کرو، کپڑے پہنو، سب کچھ کرو، ماشاء اللہ. شرعی حدود کے اندر جو چاہے کرتے رہو، اللہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، آج تمہاری چھٹی ہے، بالکل پوری ڈیل دی آج ماشاء اللہ، کھانے پینے کی دو چھٹی ہیں. کیوں دیے دعا میں یہ دی، یہ دو چھٹیاں کیوں دی اللہ پاک نے، خوشیاں کیوں دی ہیں، وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ دو خوشیوں سے پہلے اللہ پاک نے دو احکام دیے ہمیں، دو حکم دیے. کتنے؟ دو حکم. عید الفطر کی خوشی سے پہلے ایک حکم دیا، کھانا پینا چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، بس قصہ ختم. روزہ کہہ دیا اس کو، تو الحمدللہ بڑی سمجھ میں آئی یہ بات ہم سب کے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات تو بڑی سمجھ آ گئی کہ تم پوری امت کو سمجھ آتی ہے، حکم ہے اللہ کا، جیسے حکم اور حکم، یہ بھی ایک حکم ہے، فرق تو کچھ نہیں. بڑی سمجھ آئی بات، امت کی بات ایسی سمجھ آتی ہے کہ ابھی سے تیاری ہو رہی ہوں رمضان کی، ماشاء اللہ خوب پکوڑے تو یہ وہ دو مہینے پہلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی رونق جناب، اور بڑے ذوق شوق سے ماشاء اللہ، یہ مسجد باہر تک پھیلی ہے اور روشن ہو گئی ماشاء اللہ، بار بار دوسرے کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں، آتا ہے مزہ. یہ بات بہت سمجھ آئی ہماری امت کو. تراویح پڑھتے ہیں جی، تراویح پڑھیں گے، ساری رات ساری رات پڑھتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے، خبردار جو کھائیں نہیں کھائیں گے، بہت رمضان کوشش کرتے ہیں روزہ خراب نہ ہو ہمارا، کرتے ہیں کوشش. تو اللہ تعالیٰ کا واہ، تم نے میرے حکم مانا ہے، جاؤ تمہیں چھٹی کھاؤ، خوشی خوشی ہوگی. دوسری کو بھی یہ کیا، ایک حکم صرف دیا، حکم بھی سب کو نہیں دیا بلکہ خاص لوگوں کو دیا، بجنی کے پاس استطاعت ہو میرے گھر آنے کی، عرفات پہنچو سیدھے، چکر کاٹتے ننگے ہو جاؤ، بالکل ہو گئے ننگے، نام بھی مل لیتے جاؤ، ٹھیک ہے تکبیر پڑھتے جاتے ہیں، سب سر پہ بھی کچھ نہ ہو، پاؤں میں بھی کچھ نہ ہو، قدم بھی نہ اٹھے، بالکل ٹھیک ہے جی. عورتوں کو کہتے چلو اٹھا دو منہ سے اپنے نقاب، ٹچ نہ ہونا، आपके मुंह के ऊपर बिल्कुल टच ना हो स्वप्न का, औरतें मान जाती बात सब जो हो रहा है। तो उसमें से ये कि सबसे है कि ज्यादा से ज्यादा अरबों मुसलमान हैं लेकिन गए कितने 30-40 हजार या फिर ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने ये हुक्म माना तो माशाल्लाह पूरी उम्मत को अल्लाह पाक ने रंग दिया उनके सदके से। कहते हुक्म तो ये मान रहे हैं, इनको साथ ही पहुंच गए हैं, लेकिन ये है कि तुम्हारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी उम्मत को, नुमाइंदे हैं। तो माशाल्लाह जाओ, तुमने मेरा एक हुक्म मान लिया, तुम सबको खुशी मनाओ ईद हॉलीडे। तो दोनों खुशियां जो एक बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए, उस दोनों के पीछे एक सफ दो अहकम है, दो अहकम है सफ। और फिर उसके बाद खुशी आती है, अब ये देख लें कि आज ईद का दिन था और जो ईद उल फितर का दिन होता है, मुझे तो ऐसा लगता है आप भी महसूस करते हैं बिल्कुल मुनफरद दिन होता है हमारा, पता नहीं अजीब सी दुनिया लगती है, अजीब सुबह। और जब दूसरा दिन आते हैं तो बिल्कुल अजीब, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया, मुझे तो ऐसे लगता है बिल्कुल पता नहीं चलता जी कहाँ आदमी है, किधर कैसे खा रहा है और क्या, वो खुशी हो जा रही है खाम खाम, हर एक खुश हो गए मिल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रही बात कैसे खुशी है। खुशी तो बहुत आती है किसी चीज़ में, हम रोज़ खुशी हो जाती है, गाड़ी लिए खुश हो रहा है, आदमी मकान ले रहा है खुश हो रहा है, या कोई मामला हो रहा है खुश हो रहा है, खुशियाँ आती रहती है साल में, लेकिन ये खुशी कोई अजीब होती है इसमें। तो ये इस खुशी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सरूर एक मुसरत होता है दिल के अंदर अजीब सा, वो कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह आप हजार सब जानते हो कि उस खुशी का कोई अजीब सा मजा है, इस खुशी का, ईद की खुशी का बच्चे को अजीब मजा, उस हर बच्चे बच्चे को उसमें जो है एक अजीब कैफियत होती है इस खुशी के अंदर, जो आम खुशियों से बड़ी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। ऐसा है या नहीं है, ऐसा है ना, जैसे आज का दिन था देखें अजीब ही खुशी हो जा रही है, बड़े मस्त होता है, जैसे आदमी माशाल्लाह खा भी जाता है और फिर बातें कर रहा है और लोगों से मिल रहा है, अजीब जी आदमी बस समझ नहीं आता क्या हो रहा है, कैफियत होती है। ये एक बात अजीब है इसमें, आप सोचें जरा कि आज इसके दिल में जो बात बता देता है आप खिदमत सुन लेंगे, नहीं तो फिर काट देगा ना बात। मुझे तो ऐसा लगा कि अल्लाह सुबहाना ताला हकीकत में एक पैगाम दिया है इसमें हमें कि देखो मेरे एक हुक्म को तुमने माना है, एक ही था ना हुक्म रमजान का, ये दो थे हज का एक ही हुक्म है ना, मेरे एक हुक्म को तुमने मान लिया तो मैंने तुम खुशी दी, बाकी खुशियाँ जो आती हैं वो हमारी खुशी होती है, हमारी तरफ से होती हैं, खुशी मकान लिया खुश हैं, घर लिया खुश हैं, और ये खुशी कहाँ से आ रही है, अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह की तरफ से जो खुशी आती है उसका मज़ा कुछ और होता है उसका मज़ा तो कुछ और होगा। इसमें एक पैगाम अल्लाह ने दिया कि तुमने मेरा एक हुक्म माना है तो मैंने तुम्हें खुशी दी, मैंने दी है, और उसकी कैफियत तुम देख रहे हो बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन ये अभी एक तुम्हें झलक दिखा रहा हूँ, ग्लिम्स है थोड़ा सा, क्यों कि ये जो खुशी तुम सुरूर महसूस कर रहे हो मेरे एक हुक्म पे मानने पर, ये हकीकत में खुशी क्या है, ये वो उस खुशी की एक झलक है कि जिस वक्त मेरे पूरे हुक्म को मानने के बाद जन्नती जन्नत में जाकर खुशी महसूस कर, उसकी एक झलक तुम्हें दिखा रही हूं कि हकीकत में ये जो खुशी होती है इसका कनेक्शन किससे मिलता है, जन्नत की खुशियों से मिलता है, एक हुक्म को। ये तो ये एक खुशी का मामला ये है कि थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं तो तुम समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मस्ती में घूमते फिरते हो, तो जब जन्नत ही जन्नत में जाएंगे मेरे पूरे अहकाम को बंद करने के लिए, तो उनकी खुशी का क्या आलम होगा, क्या खुशी होगा। तो हुक्म यह है कि भाई एक खुशी का यह एक हुक्म पे खुशी है तो पूरी जिंदगी क्यों नहीं मेरे अहकाम पर गुजार देते, मेरी बातों को तुम क्यों नहीं मानते, ऐसी मस्त रहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई ऐसा है कि जो लोग अल्लाह के अहकाम को पूरी तरह गुजारते हैं तो उनकी हर रोज ईद होती है, उनके लिए ईद एक चांद की ईद नहीं होती, रमजान की नहीं होती, वल्लाही उनकी हर रोज ईद होती है, हर रोज एक नई शान के साथ अल्लाह ताला पे तजल्ली फरमाते हैं उनके कलब के ऊपर। और क्योंकि मैंने अर्ज किया कि ये खुशी का ताल्लुक जो अल्लाह की तरफ से है, कहाँ से आ रहा है, ये जन्नत की उस खुशियों से आ रहा है जो जन्नत में नसीब इंसान को हो, तो दुनिया में रह के इंसान जन्नत के मजे लूटता है, सही कह रहा है नहीं क्या, तो हम क्या करते हैं खुशी में, अजीब बात है, खुशी में हमारे से ये गलती हो जाती है और मस्त हो जाते हैं खुशी में, जो थोड़ा बहुत मामला थे वही ख़त्म कर देते, जो नमाज पढ़ते थे, देखें आज भी कुछ मुझे कुछ कम नजर आ रहे हैं पहले से लोग, ईद है जी। बास तो पूछ भी थे जी आज जिक्र होगा, आज तो ईद है आज ही तो जिक्र होना है वो आज ही तो जिक्र होना है, ईद के मतलब खुशी, तो खुशी तो जिक्र में है सब कुछ। तो हमसे क्या गलती होती है, जिस वक्त जिक्र करना चाहिए वही वक्त हम छोड़ देते। अल्लाह वाकुर, क्या सहाब थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हाँ, सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला, बहुत ही प्यारे सहाबी, बहुत ही प्यारे सहाबी। और हर सहाबी का अपने एक मुकाम है, जिस सहाबी की तारीफ करने लगो या पढ़ने लगो तो लगता है यही सहाबी सबसे बड़ा है। ये अजीब शान है हर सहाबी की, मुनफरद शान है। हर सहाबी अपनी जगह एक चमकता हुआ सितारा है, और खूब हर सितारा खूबसूरत नजर आता है आसमान पे आप देखें तो। जिस सहाबी को टच करो तो बस लगता है कि यही है, बस उसके बाद कुछ नहीं। हज़रत सलमान फारसी, क्योंकि ये हदीस है मरवी की है, तो आपका मुकाम भी खूब था। बल्कि हकीकत ये देखो कि बहुत से मुकामात में, बहुत से मनकत में, बहुत से अहवाल के अंदर हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला ने जो है वो मुनफरद डिफरेंट नज़र आते हैं सहाबिया से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, जैसे मौलाना भाई, इनकी स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन इनको आज़ादी गुलाम दर गुलाम खुद से रहते, फारस से थे ये, और मजहब इनका दूसरा मजहब था। होते होते गुलाम जो एक यहूदी के पास थे, तो ये शख्स सबसे बेहतरीन शख्स हज़रत फारसी रज़ी अल्लाह ताला को ये है कि नबी करीम ने किसी से सोना दिलवा को खुद आज़ाद कराया उनको। आपके आज़ाद करदा गुलाम है। और दूसरा तो शर्फ बहुत ही अजीब है, बहुत ही रश का मुकाम है तमाम साहबा के मुस्तिक। खंदक का वाक़ हो रहा था, तो उसमें आप ही की बताई हुई तजवीज़ थी खंदक खोदने की। तो वहाँ कोई ऐसा मामला हो गया, लंबी बात है, नज़ा हो गया, तो अंसार और महाजर दोनों झगड़ पड़े इनके ऊपर। देखिए ज़रा क्या झगड़ा था, वो कहते हैं ये मेरे हैं, वो कहते हैं ये मेरे हैं। अंसार कहने लगे मेरे हैं, और माजरी क्या कहते थे ये हमारे साथ हैं। अब झगड़ा काफ़ी वो नज़ा बना, तब इंसाफ किसने करना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये झगड़ा बहुत बड़ा था, सरकार ने बड़ा अजीब इंसाफ किया, इंसाफ किया कि अब कुर्बान जाऊँ हज़रत फारिस के, कि तेरी किस्मत ही खूब किस्मत थी। आप इंसाफ किया कि ना ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे ये मेरे हैं, ये अहले बैत में से। कितना बड़ा दर्जा मिल गया, असल अहले बैत में है, खानदान में ले आ लिया। और जो लफ्ज और सरकार नबी कब से जबान से निकल जाए वो मुस्तनद हो जाए, वो तो वही बन जाता, वो तो काम ही बन गया। तो दर्जे उनका ये हो गया कि अहले बैत में शुमार हो गया है। अब आप ये देखें कि कितना, वैसे भी असहाबा सफा में उनका सहाबी है, वहाँ के सहाबी फकीर सहाबी है, असहाबा सफा के ताल्लुक रखते हैं उससे बहुत, मतलब बुलंद मुकाम का है। तो अब सोचें आप इनके बारे में कि कितना बड़ा अल्लाह ने इनको दर्जा दिया। तो दर्जे के जब आदमी को कुछ चीज़ मिल जाती है तो क्या हो जाता है, वो ना कुछ की क्या हो जाती है, ऊपर हो जाते, भूल जाता अपने आप को। सुभानअल्लाह, क्या कौम थी, क्या इंसान थे अल्लाह, क्योंकि ताल्लुक उनका नबी पाक से होना था और सहाबे रसूल थे। अजीबी चीज़ें थी, वो तो अजीबी चीज़ें थी। हाकिम हुए हज़रत उमर के ज़माने में, हाकिम बनाया उनको मदीन का, बहुत बड़ी स्टेट थी उसका, हाकिम गवर्नर जिसका होता है। कितनी बड़ी चीज़ होगी गवर्नर, और कितने बड़े बड़े हज़रत को मुकामात दिए गए अल्लाह की तरफ से। घर नहीं था, गवर्नर थे, कभी दरख्त के साए में सोते थे, कभी दीवार के साए के नजर अपना वक्त गुजारते थे, वहाँ बैठते थे। एक सफ कमली थी काली, और कुछ नहीं था साथ। हत्ता की फकीरी का ये आलम था कि एक दफा बाजार से जा रहे, तो किसी आदमी मजदूर की जरूरत थी, मजदूर तो उसने मजदूर को मजदूरी करेगा कि जी करूंगा, उठाओ सामान मेरा, उन सामान से चल पड़े लेके। सामने से कुछ जानने वाला उसने, ये हाकिम आप किधर जा रहे हैं, ये क्या, ये किसका सामान आपने उठाया हुआ है? तो जब उस आदमी ने देखा तो हाकिम है, तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसने कहा खुदा के वास्ते आप इस सामान अपने सर से उतार दे। सुभानअल्लाह, क्या बात की हंसी। कहने लगे कि सलमान वादा कर चुका है ये सामान तेरे घर तक ही पहुंचा के आएगा। ये थे आशिक रसूल। सुभानअल्लाह, क्या तरबियत थी इनकी खुदा की। दुनिया का नामो निशान नहीं था, पता भी नहीं था दुनिया होती क्या चीज है, पता ही नहीं था। आशिक कैसे, अल्लाह अकबर, 250 साल उम्र थी, 250 ईयर्स। मदाइन में इंतकाल हुआ, हस्त अली को जब पता चला, मदीन से आए उसी वक्त गुस्ल देने के लिए, और एक रहा था कि वहाँ से दफन वहीं हुए मदाइन के अंदर, वहीं मज़ार उनका। और इनकी एक और बात भी सिर्फ नक्शबंदी को बता दूँ, आपके बातिन के इलम इंतसाब जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक से है, इसीलिए सिलसिला है नक्शबंद मुक्तदा में है, ये सलमान फारसी सिलसिला नक्शबंद के अंदर आते हैं। बातिन ताल्लुक आपको किससे था, अबू सिद्दीक से था, तो ये सिलसिला नक्शबंद में आते हैं, हमारे मुसलाह में आते हैं। तो वहीं दफन है मदाइन के अंदर, हज़रत अली ने गुस्ल दिया, खुद आए जिनको पता चला इतना बड़ा शख्स है, वहाँ से आए आके गुस्ल दिया और जहाज में शामिल होकर फिर वापस गए। तो ये इतने बड़े इंसान, आप ये देखें कि अल्लाह ने कितना बड़ा उनको दर्जा दिया, लेकिन फ़ख्र और फाका और आजजी और नीचा तवाज़ा, क्या इंसानों की खसूसियत आप देखें, जितने भी सहाब थे अल्हम्दुलिल्लाह जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये इंसानियत ये है, इंसान ये होता है। इंसान जो है रुतबों से या किसी चीज़ों से बुलंद नहीं होता है, पैसे से नहीं होता, बल्कि जितने भी इंसान ऊँचा होता है उतनी ही तवाज़ा उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, उतनी गिरना शुरू हो जाता है नीचे। भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं सूफीज़म पर, तस्की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूर इस पर अपना मुहासबा किया करें कि हमें हाजी करने के बाद हाजी कहलाने का शौक़ होता है या गुनाहों पर रोना होता है। आशिक कितने दर्जे के आशिक थे, कितना ये इश्क जिनको होता है उनकी ज़िंदगी भी ऐसे गुजरती है ना। तो इंतकाल से पहले बहुत रो रहे थे, किसी ने पूछा हजरत क्यों रोते हैं आप, इतने बुलंद इंसान है आप, नहीं नहीं आप पल्ले के अंदर है। तो ये क्या जवाब दिया और क्या इश्क था, कह लेंगे मैं रो किसी दुनिया की वजह से नहीं रो रहा, ना ही मैं किसी और वजह से रोता हूँ, मेरा हिसाब क्या होगा, मुझे तो सिर्फ एक गम एक है कि बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे गम और फिक्र यह है कि कहीं अपने गुनाह की वजह से मैं जमाल रुख यार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम ना रह जाऊँ, और मुझे ख़तरा हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं उनके दीदार से महरूम हो जाऊँ, कि जा तेरे गुनाह बहुत हैं तो उनका दीदार नहीं कर सकता। अल्लाह को तो भाई ये तो खत इनकी खुद मैंने आपको बयान फरमाई, बात हो रही थी खुशी की, यही सलमान फारसी की एक हदीस से बयान करता हूँ इस सिलसिले में। तो आज खुशी का भी दिन है और एक प्रैक्टिकल दिन हमारे साथ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं कि खुशी में, खुशी के वक्त में जब इंसान अच्छे वक्त में, खुशी के वक्त में, आज खुशी का दिन था, ईद का दिन आते हैं, जब अल्लाह को बंदा याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह ताला ने भी ख़ास मखसूस फरिश्ते, तो हर चीज़ के अल्लाह ने मुकर्रर बनवाया, तो ख़ास फरिश्ते होंगे इस चीज़ के लिए भी कि ऐसे बंदों के लिए भी अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं फरिश्ते, कि जिस वक्त वो लोग जो खुशी के अंदर अच्छे हालात में, अच्छी सेहत में, अच्छे पैसे के साथ, अच्छे रुख पर अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को नहीं भूलते। जैसे आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है ना, इसमें ये तो नहीं है खाओ पियो फिर अल्लाह को भूल दे आदमी, नहीं, अल्लाह का तो हुक्म ये है कि जितना खाओ जितना पियो पहनो खूब करो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, इन दो दिनों में भी मेरी याद से गाफिल ना होना, मेरी याद से ना गाफिल होना, मेरी जिक्र से ना गाफिल होना, जिक्र ज़रूर करना। अल्लाह ने खुद खुद ऑटोमेटिक हमारा काम बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने बड़े एक इस हदीस के मुस्तकन हम भी चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद तो फरमाया कि फरिश्ते जो हैं वो मानूस हो जाते हैं इंसानों से जो जिक्र करते हैं खुशी की हालत में, और दुनिया तो अप एंड डाउन हो चलती है, कभी खुशी भी आती है और कभी मुसीबत भी आती है, कभी कारोबार अप होता है और कभी बिल्कुल इंसान लेट भी जाता है, जिस जमीन पर जाता है। अच्छी सेहत होती है, बुरी सेहत होती है, दो चीज़ इंसान के साथ चलती है, हमेशा कांस्टेंट हाई नहीं कि आप हमेशा खुशियों को देखते रहेंगे, कभी ये भी नहीं कि आप हमेशा गम देखते रहेंगे, अल्लाह की तरफ ऊपर नीचे इंसान को करता रहता है। तो यही इंसान जो खुशी में अल्लाह को नहीं भूलता, ईद आई उसने पूरे मामूलात अपने किए सब ने, जिक्र पूरे किए, तस्बीहात पूरी की, या यार आज ईद है चलो आज छुट्टी करते हैं, या आज यार बोझ सिखाते हैं, आज अपना सुबह कमरा को छोड़ देते हैं, जैसे आज आज यार जुमेरात कर दिया, आज ईद कल आज ईद थी, आज कोई नहीं कल कर लेंगे, जुमे भी तो होते हैं ना जिक्र, ये आजमाइश होती है अल्लाह ताला की। तो क्या है, फरिश्ते मुकर्र किए गए हैं, सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आ गए अल्लाह के जिक्र पर। क्या हुआ, फरिश्ते जो होते हैं फिर वो मानूस हो जाते हैं, और कल तो बुरे दिन आने आते हैं, मुसीबत के दिन आते हैं, तो फिर क्या होगा, जब मुसीबत के दिन आते हैं तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से सिफारिश करते हैं, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तो बंदा बहुत परेशान है, इस पर तो कष्ट चढ़ गया है, इस पर तो मुसीबतें आ गई, ये तो बहुत सख्त बीमार हो गया है, ये तो बहुत परेशान हाल हो गया है, ये तो बहुत सेहतमंद था बेचारा खत्म हो गया, होता ना आदमी का, ये छोटी मुसीबत आ जाए, चलो चलते चलते आप मोटरे पे जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई आपकी, मेजर से आदमी को टायर चेंज नहीं करना था, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि मैं अब खड़ा हूँ, टायर पंचर हो गया, मैं उसको कैसे चेंज करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जिक्र करने वाला है खुशी में जिक्र करता है तो इंशाल्लाह कोई फरिश्ता आके आपको टायर को चेंज कर देगा, इंसान में फरिश्ता आ जाएगा कि भाई साहब आप क्यों खड़े हैं, बुलाना क्यों खड़े हैं, क्या बात है, या कोई और है भाई साहब, मैं आपको इस शिफ़ करता हूँ, आप फरों के इंसान नहीं को फिश्ता आ गया, क्योंकि मैं जिक्र करता था खुशी में, मैंने ईद भी जिक्र को नहीं छोड़ा, पहुँच गया था, काम आई बात या नहीं, यानी अच्छा हुआ ना आपने अपने नफ्स को मारा, नहीं यार नहीं इनको नहीं यार छोड़ो, आज तो आज चलते हैं यार, बैठेंगे हजरत के पास बैठेंगे, बात सुनेंगे, जिक्र करेंगे, उधर गलबा किसका था, अल्लाह की मोहब्बत का था, और उधर गलबा किसका था, नफ्स का था, दोनों में जहाद हुआ, कौन जीते, आप जीत गए, आप जीत गए, और जब आप जीते तो फरिश्तों से आपकी पक्की दोस्ती हो गई, अब कब जब बुरे हालात होंगे तो फरिश्ते आएंगे, कहेंगे अल्लाह ताला तो वो बंदा है तो छोड़ता ही नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ छोड़ के तेरे साथ फाजत था, जो मस्जिद में हमेशा आता था उसमें हमेशा आता था, उसने छोड़े ही कभी नहीं, हाँ किसी मजबूरी पर छोड़ना और बात है, लेकिन नफ्स से छोड़ना और बात है, चलो यार क्या ये वाली बात, तो ये तो छोड़ता ही नहीं था किसी वजह भी, उसने जिक्र की मस्जिद नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। तो सुभान अल्लाह, मैं से बताऊँ बात, जब आदमी ऐसे होता है तो अल्लाह ताला उसको कोई मजबूरी आने नहीं देता, और बहुत कम लोग ऐसे बीमार होते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं कि वो जिक्र पे ना सकें, आप सोच लें बात, बहुत कम आप देखेंगे वो शख्स बीमार ऐसा हो, कितने ही हो बीमार, लेकिन कोई ऐसा बीमार नहीं हो सकता ना आए, अल्लाह ताला फिर उसको जिक्र पे पहुंचा ही देता है, हमने देखा है बुजुर्गों की जिंदगी में तो ये होता है, अल्लाह उसको ऐसी बीमारें आने ही नहीं देता कि पहुंच ना सके, किसी ना फिर पहुंच जाता है, और बहुत कम उनका नागा होता है जिक्र के अंदर, फिर इसमें अल्लाह की मदद चलती है ना आदमी के साथ, आदमी टैंक कर जाए खुश हो जाता है, फिर तो अल्लाह तला करता है, ये शैतान करता है, ड्रामा है होता, पक्का करेंगे जिक्र, मामूलत पक्की करेंगे ना, तो फिर फरिश्ते दोस्त हो गए, क्या करते हैं, सिफारिश चलती है किसकी, अल्लाह की तरफ। यहाँ एक और बात चलती है कि देखें सिफारिश होती है या नहीं होती, जब आसमान पर सिफारिश होती तो नीचे भी ऐसे लोग होंगे जिनकी सिफारिश अल्लाह सुनता होगा, बेज़निल्लाह, लोग कहते हैं वास्तों से क्यों दुआ क्यों मांगते हैं, डायरेक्ट मांगे, जिस अल्लाह का खुद हुक्म है, अल्लाह ताला ने जब हम खुशी में आ गए तो क्या वो डायरेक्ट फैसला हमारा नहीं कर सकता था, उन फरिश्तों से सिफारिश क्यों कराता है, क्या जरूरत है उसको फरिश्तों से सिफारिश कराने की, मुझे बताएं, खुद ही कहता नहीं मैंने सुन लिया बात मैं इसको कर देता हूँ, साबित ही होता है कि सुन्नत इलाही है, इसमें अल्लाह की कोई हिकमतें हैं बहुत पोशीदा, जो आप इस तरफ हम नहीं जाते, तो उसने ये एक सिस्टम भी रखा है कि किसी के जरिए सिफारिश की जाए तो अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, तो ऊपर अल्लाह ने फरिश्तों को रखा है और नीचे औली अल्लाह को रखा है, फिर क्या देंगे, ये ताल्लुक जो बनते हैं वैसे ही नहीं है, और ये सब क्या है, बिस्मिल्लाह है, किसी की जरूरत नहीं कि अल्लाह के यहां सिफारिश कर सके बगैर इज्न अल्लाह के, इज्न अल्लाह होता है, और आखिर में सिफारिश इसी तरह होगी अल्लाह के हुक्म से होगी, तो वो जब अल्लाह वाले हाथ उठाते हैं और जब सिफारिश करते हैं इंसान की, और जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो लोग वास्ते से मांगते हैं, दुआओं को मांगते हैं, वो सब बिजनिल्ला है। सभी थोड़ा चीज से कि फरिश्तों को मुकर्रर किया कि तुम सिफारिश करो, फिर सिफारिश कर रहे हैं फरिश्ते, या अल्लाह ये बंदा तो सब कुछ पता है, अलीम और कबीर है, कि तेरा उस वक्त याद थे और तेरे हर परेशानी के मतलब उस वक्त में पहुंच जाते थे, खुशी में आते थे, तो अब तू हम सिफारिश करते हैं कि तू इनके इस मुसीबत से निकाल दे। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया, निकाल देते। अब बस दूसरे आदमी वही जो जब खुशी के वक्त होते हैं, कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, हम ही हम हर चीज, बस जो हम है जरूरत ही नहीं, क्या जिक्र अल्लाह, कैसा जिक्र अल्लाह, कैसा याद करना, अभी तो जरूरत ही नहीं हमें किसी न किसी पर, हम तो ये हमें क्या जरूरत है अल्लाह, हम तो फलाएं, हमें क्या जरूरत है अल्लाह को याद करना, करेंगे यार ठीक है, और कुछ नहीं, मजाक ही सही इसमें चले, एक ये पार्टी भी हो जाती है तो फिर क्या होता है, मुसीबत तो आनी होती है ना ऐसे इंसान पर भी। हदीस ये हज़रत सलमान फारसी जिसकी जो किस मुकाम के ये अल्लाह के वली और ये वो थे सहाबी थे, आप ये देखें, वो तुम्हें थोड़ा किस्सा सुनाया आपको, फकीर सहाबी कहते हैं कि जिस वक्त मुसीबत आ गई अब क्या करता है, वो पकड़ता है तस्वीर, फिर अल्लाह अल्लाह करने चक्कर में होता है, तो उधर से क्या जवाब देता है, सबसे पहले फरिश्ते कहते हैं कि तुझे अब याद आया अल्लाह, उसे वो कहाँ था जब मस्ती में बैठा था, जा हम तेरी सिफारिश नहीं करते, हदीस के लफ्ज़ से। और ये मौजू है फिरौन के अंदर, वाक्य के अंदर बताया गया है कुरान के अंदर कि फिरौन जब डूबने लगा तो उसको ख्याल आया कि अब मैं अल्लाह को पुकारूँ, अल्लाह को मैं अब याद करूँ, तो अल्लाह ने क्या कहा, क्या जवाब दिया अल्लाह ने, कहता अब मुझे मैं तुझे याद करूँ, कहता भाई सा कबला, इससे पहले तू कहाँ था, अब तुझे अल्लाह याद आ रहा है, अब तू डूबते ही रहेगा, तेरा कोई तेरा कोई सिफारिश नहीं, ना कोई फरिश्ता तेरी सिफारिश करेगा और ना मैं तेरी बात को सुनूंगा, नहीं कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला से हमें तौफीक दे के इतनी बड़ी चीज़ है कि खुशी की हालत हो या गमी की हालत हो, गमी की हालत हो या खुशी की हालत हो, बंदे का एक ही काम है अपने रब को याद करता रहे, उसकी याद से कभी भी गाफिल ना हो, कुल अहयानी हर वक्त खुशी में तो बल्कि ज्यादा अल्लाह को याद करें, अल्लाह को ज्यादा याद करें, पूरा हज आप देख लें चल रहा है जिक्र के साथ ही चल रहा है, हर मुकाम पे हुक्म हो रहा है जिक्र करो जिक्र करो जिक्र करो जिक्र करो, अल्लाह कह रहा है ताकि आप जिक्र, जब हज खत्म होने वाला तो अय्याम तशरीक ही बना दिए, कहते आप तो ये दिन है ही और मेरे जिक्र करने के मुझे याद ही करते रहो। तो भाई ये बड़ा चीज़ है अल्लाह का जिक्र, हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है, तो किसी बहाने को भी ना लाए करें सामने, समझे ना, खुशियाँ और गम आते रहते हैं इंसान पर, एक ही सहारा पकड़ने बस अल्लाह का सहारा, बस अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, कितना सफ़र करना पड़े, कितनी दूर आना पड़े, कितना नफ्स को मानना पड़े, कितनी कोई जब तक कि कोई ऐसी उजर ना पेश आ जाए कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कि भाई अब तो बहुत मजबूरी है हम नहीं जा सकते, तब तो है, वरना एक जाकिर की शान ही नहीं कि जिसको अल्लाह ताला इतना बुलंद मुकाम दे दे, इतना बुलंद मुकाम दे दे कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, कितना ऊंचा मुकाम दिया अल्लाह पाक ने, दसलाओ कितना ऊंचा मुकाम दिया है अल्लाह पाक ने जाकरीन को कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, इतने बुलंद मुकाम से आदमी फिर नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हर हालत में अल्लाह का जिक्र कायम रखें, खुशी हो गम हो सब काम अल्लाह ही नहीं बनाना है, अल्लाह नहीं बनाना है, अल्लाह ही करता है काम, कोई भी दुनिया की ताकत पत्ता भी नहीं सकता अल्लाह के वजूद के साथ, अल्लाह ने वादा कर लिया कि जिक्र तो करता रहे, फरिश्ते मुद कर दिए ये सिफारिश करते रहेंगे और मैं इनकी सिफारिशों को मानता रहूँ।